الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. سورة مائدہ کی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، مارف القرآن جلد نمبر 3 سے، اور سورہ مائدہ کی دوسری ہی آیت کی تفسیر چل رہی ہے. اس میں ہم صفحہ نمبر 23 پر پہنچ چکے ہیں، تو آپ کے سامنے امید ہے کہ سکرین کے اوپر شیئر بھی ہوا ہوگا وہ صفحہ. تو اس میں وہی جو اس آیت کا ایک حصہ ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو اسی کے تحت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کافی تفصیلی جو ہے وہ بحث فرمائی ہے یہاں پر، کہ یہ اللہ رب العزت نے ایک تو ہمارے یعنی گھٹی میں ڈال دی، ٹھیک ہے، کہ ہم بغیر تعاون کے دنیا کے اندر جی ہی نہیں سکتے، تو یہ ہمارے لیے مجبوری بھی ہے تعاون کرنا، کہ روٹی بھی کھانی ہے تو روٹی جو ہے وہ بغیر تعاون کے نہ بن سکتی ہے، نہ پک سکتی ہے، نہ ہمارے گھر تک پہنچ سکتی ہے. بہت سارے لوگوں کا تعاون چاہیے ہوتا ہے، تو اسی طرح سے ہر چیز کے اندر، ٹھیک ہے. تو یہ بات ہم پیچھے کرتے آ رہے ہیں، آگے ہم اچھا تو آخری بات ہوئی تھی، وہ حضرت نے یہ نقطہ لکھا تھا کہ یورپین اقوام کا جو یعنی یہ جو دنیا کے اندر باہمی نظام جو چل رہا ہے نا، تعاون اور تعلق کے اوپر ہے، تو اس میں جو ہے وہ ہیومن سوسائٹی پہلے تو یعنی ڈائریکشن بیسس کے اوپر بنی، نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ اس طرح سے قومیں بنی، پھر ان کے اندر جو ہے وہ جیسے کہ لوگوں کے آپس میں شادیاں ہوئیں، اور پھر وہ خاندان بنے، اور خاندان سے قبائل بنے، شعوبوں و قبائل لتعارفوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ ہم نے آپ کو تم لوگوں کو شعوب اور قبائل کے اندر تقسیم کیا ہے، تاکہ ایک دوسرے سے یعنی ایک دوسرے سے تعارف کرو، پہچانو اپنے قبیلے کی بنیاد پر. تو اس بنیاد پر جو ہے وہ قومیتیں وغیرہ تو بنی، ٹھیک ہے، لیکن پھر ایک وقت دنیا کے اندر ایسا بھی آیا کہ جبکہ یورپین اقوام جو ہے وہ دنیا پر غالب آ گئیں، تو اب یورپین اقوام نے جو ہے وہ نسب وسب کا تو ان کے یہاں معاملہ ہم نے بات کری تھی کہ ویسے ہی ختم پہ تھا، تو انہوں نے جو ہے نا پھر نیشن سٹیٹس بنائیں، ٹھیک ہے، اور وہ نیشن سٹیٹس کیا تھیں، بالکل ہی جو ہے وہ بے ڈھنگی قسم کی، بے ڈھنگا کہتے ہیں نا کسی چیز کو، ہے نا، کہیں کوئی ڈھنگ نہیں بنتی جس بات کی، کوئی تک نہیں بنتی جس بات کی، تو اس کی بنیاد پر جو ہے وہ نیشن سٹیٹس بنائیں، ٹھیک ہے نا. اب جیسے یعنی ہمارے ہاں تو سندھی پنجابی بلوچ اور یہ وہ سب جو ہے وہ بنا دیے گئے، حالانکہ اگر آپ پنجاب کا صوبہ اٹھا کر کے دیکھیں تو اس کے اندر سارے پنجابی تو نہیں رہتے، یعنی پنجابی کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پانچ دریاؤں کے گرد کیا سارے لوگ بسے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر، پانچ دریا تو گزرتے بھی نہیں ہیں پنجاب میں سے، ابھی تو سارا کا سارا جو تماشا چل رہا ہے، تو اس میں تو اور بھی زیادہ پھر سے وہی پرانی باتیں جو ہم نے بچپن میں سوشل اسٹڈیز کی کتاب میں، پھر پاکستان اسٹڈیز کی کتاب کے اندر پڑھی تھیں، کہ وہ چھ دریا تھے، ہے نا، چھ دریا میں صرف تین دریا تھے، وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت جو ہے وہ سارے کے سارے انڈیا کو مل گئے، ٹھیک ہے نا، چناب بھی ان میں سے ایک تھا، اور سوری چناب نہیں، وہ راوی اور جو ہے وہ پتہ نہیں اور دو کون سے تھے، ستلج اور بیاس، ٹھیک ہے، اور ادھر جو ہے وہ تین دریا یہاں پہ آ رہے تھے، ٹھیک ہے. تو पाकिस्तान के एरिया के अंदर जो है वो तीन दरिया आ रहे हैं, जो कि कश्मीर और पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है वो हिमालया से जो है वो दरिया निकलते हैं, ठीक है। और उनका भी जो है वो 88% अभी रिसेंटली जो ये बातें आ रही हैं, तो उससे फिर मुझे भी याद आया सारी बातें, ठीक है। तो 88% पानी जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इन तीन दरियाओं का आता है। तो भाई पांच दरिया तो इधर है ही नहीं, ठीक है ना, तो तीन दरिया है, तो तीन आब नाम रख लो भाई सूबे का, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो एक पंजाबी जुबान जो है वो डिफाइन हो गई, ठीक है। तो भाई पंजाबी जुबान, एक तो उसके अंदर इतने सारे डायलेक्ट्स हैं, फिर उसी एक एरिया के अंदर जो है वो सराइकी भी बोली जाती है, उसी के अंदर जो है वो हिंद को भी बोली जाती है, और न जाने कौन कौन सी जुबानें जो है वो वहां पे बोली जाती हैं, ठीक है। और ये दरिया जो है, तो भाई हर बंदा जो है वो पांच दरियाओं के बराबर में तो नहीं रहता, एक दरिया के बराबर में एक बंदा रहेगा ना खाली, ठीक है। तो बस तुक कोई नहीं है इसकी, ठीक है ना, कोई तुक नहीं है भाई। वही दरिया जो है वो सिंध का जो दरिया है वो आपके सूबे सिंध के अंदर भी तो आता है, ठीक है। तो वहां वाले बंदे को जो है वो आप आबी क्यों नहीं कहते, कहना तो आबी चाहिए, पंजाबी तो कहना भी नहीं चाहिए, आबी कहना चाहिए कि भाई आपके गिर्द रहते हैं आप, पानी के गिर्द, ठीक है ना। दुनिया के अंदर हमेशा से सिविलाइजेशन जो है वो पानी की बुनियाद पर जमा हुई है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल एक मुसलमान के लिए क्या है कि मक्का मुकर्रमा के अंदर जब जमजम का कुआं निकला है, तो वहां पर कबीले जुरहम के लोग आकर के सेटल हुए हैं मक्का मुकर्रमा में। किस बुनियाद पे, क्यों सेटल हुए थे वहां पर, पानी की वजह से सेटल हुए थे, राइट। तो पानी होते हैं, तो पानी से जो है वो वजअलना मिनल माई कुल्ल शयइन हय, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं हमने पानी से जो है वो हर चीज को जिंदगी बख्शी है, ठीक है। और हमारा अपना वजूद जो है वो 70% से ज्यादा पानी है, और दुनिया का वजूद जो है वो 75% से ज्यादा जो है वो पानी है, ठीक है। तो पानी तो ये है, और जाहिर है जब पानी के गिर लोग आकर के रहेंगे, तो जिस तरह मक्का मुकरमा में हुआ कि जुरहम वाले आए इधर से जो है वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और जो है वो उनकी वालिदा अम्मा हाजरा वो वहां पे पहले से मुकीम थी। तो अब क्रॉस शादियां हुई, इस्लाम की शादी जो है वो कबीले जुरहम की, तो अब जो ये मुख्तलिफ कबाइल के लोग जब एक जगह पे आकर के इकट्ठा होते हैं, और इधर से जो है वो लड़का होता है या इधर से लड़का इधर से लड़की इसकी भी शादी होती है, तो ऐसे फिर जो जनरेशन आगे बनती हैं, तो अल्लाह ताला निजाम ये बनाए कि वो बहुत ज्यादा जहानत वाली होती हैं, बहुत ज्यादा जहानत वाली होती हैं, ठीक है। तो ये कोई नया नया चीज तो नहीं है, लेकिन आपने उसको लेकर के क्या बनाया हुआ है, एक बेढंगा किस्म का एक बड़ा सा जो है सूबा बनाया हुआ है, जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि किसकी कोई इंतहा नहीं, ठीक है ना। अब उसको जो है वो एक गवर्नर साहब बैठ करके जो है मैनेज कर रहे होते हैं, एक जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है बैठ करके मैनेज कर रही होती हैं, जो भी कर रही होती हैं वो है। तो भाई मैनेजमेंट कैसी होगी, ठीक है, लेकिन कोई इसके खिलाफ बात नहीं कर सकता, वरना उसकी जान के लाले पड़ जाएंगे उसके, या तो उसको पकड़ लिया जाएगा, या वैसे ही जो है उसको मार दिया जाएगा, या उसको जो है पता नहीं मुल्क का दुश्मन करार दिया दे दिया जाएगा। भाई एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी, ठीक है। तो ये बेतुकी किस्म की ये कहाँ से आई है, ये हजरत अंग्रेज जब गए थे इस जगह को आजाद करके गए थे, वो आजाद करके तो नहीं गए थे, है ना, वो तो खाली जो है वो अपने गुलामों के हवाले करके चले गए थे यहाँ से, जो कि उनसे भी बढ़कर के शाह से बढ़कर के शाह के गुलाम, ठीक है। तो वही जो है वो लेके चल रहे हैं, उन्होंने इन मसलों को तो हल करना नहीं है, राइट, मसलों को तो हल करना नहीं है यहाँ के, ना पानी का मसला, ना बिजली का मसला, ना गैस का मसला, ना किसी का मसला। हिंदुस्तान के अंदर भी मोर और लेस यही हाल है, और पाकिस्तान के अंदर इससे भी ज्यादा बुरा हाल है, ठीक है। तो अवाम जो है वो रुलते रहे, और वो अपनी कमीन यानी अपनी जो है वो अल्लाह की नाफरमानियों की वजह से, जो खुद जो है वो अवाम किसी की बात नहीं मानते, अल्लाह की नहीं मानते, अल्लाह के रसूल की नहीं मानते, अपने ऊपर जो अल्लाह ताला ने उलुल अम्र रखे हैं उनकी बात नहीं मानते, तो वो इसकी वजह से अल्लाह ताला उनको ऐसे लोगों के हवाले कर देता है जैसे कि किया हुआ है। अब वो जो है वो इनको नचा रहे होते हैं, ये नीचे से जो है वो शोर मचा रहे होते हैं, हमें हमारा हक नहीं दिया, हमें हमारा हक नहीं दिया, हमारे ऊपर जो है वो जालिम बैठे हुए, अल्लाह के बंदे तुमसे बड़ा जालिम और कौन हो सकता है, ठीक है ना, तुमसे बड़ा और जालिम कौन हो सकता है, जो कि अपने परवरदिगार जिसका दिया हुआ खाता है उसके गुण नहीं गाता, राइट, उसकी जो है वो शुक्र अदा नहीं करता उसकी नेमतों का, उसके अहकाम की बिल्कुल परवाह नहीं करता, उसकी ख्वाहिश की बिल्कुल परवाह नहीं करता, तुमसे बड़ा जालिम और कौन हो सकता है, तुम खुद जालिम हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें सजा के तौर पर तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जैसे जालिम जो है वो मुसल्लत कर दिए। जो कि तुम्हारे मसलों को जो है वो हल नहीं करना चाहते, वो चाहते ही नहीं है कि तुम्हारे मसले हल, ठीक है ना। विच टाइप ऑफ, प्लीज एनलाइटन मी, विच टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस्लाम प्रोजेक्ट्स, टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट सॉल्व्स प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। अब ये क्या क्या नाम रखे हुए हैं आपके किसी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट वालों ने, या जो है वो किसी और एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट वालों ने, उसकी क्या टर्मिनोलॉजीज रखी हुई हैं, आई डोंट नो, ठीक है ना। एंड आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट इन फाइंडिंग आउट। सही है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी हो ना कि जो के इश्यूज को सॉल्व कर सके, जो के उसको ग्रास्प कर सके, उसको डायग्नोज कर सके, उसका जो है वो हल निकाल सके। इतने बड़े बड़े जो है वो, एक जो है वो इतना बड़ा सा जो है वो एरिया वाइज बनाया हुआ है, एक जो है वो इतना बड़ा सारा जो है वो पॉपुलेशन वाइज बनाया हुआ है, और तीसरा जो है वो ऐसे ही बस नाम रखा हुआ है उसका दरिया सिंध की बुनियाद पर, और दरिया सिंध तो ऊपर से आ रहा था, राइट। तुमने एक का नाम जो है वो सिंध रख दिया, और एक का नाम जो है पहले जो है वो सरहद रख दिया कि भाई ये तो फ्रंटियर प्रोविंस है ना। और फिर उसके बाद वो शोर मचाते रहे, पता नहीं कितने लोग जो है वो नाम चेंज करने के लिए मर गए, और बिल आखिर जो है वो जब आप कॉम्प्रोमाइजिंग मोड के अंदर आए, तो आपने उसका नाम जो है वो सरहद से उठा करके खैबर पख्तूनख्वा रख दिया, ठीक है ना। यानी एक गिलगित बल्तिस्तान का जो है वो सूबा ले दे करके, पता नहीं वो कैसे बना है, क्या है उसका, मुझे उसकी तफसील नहीं पता, ठीक है। तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन तो ऐसी होनी चाहिए ना जो कि बंदों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके ना। ये तो नहीं कि बस लेके बैठे हुए हैं और बस खबरदार किसी ने इसके खिलाफ बात करी तो हम उसको जिंदा नहीं रहने देंगे, ठीक है। तो ये नेशन स्टेट जो हैं, ये इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। हजरत उमर फारूक हजरत आरान वॉज द फर्स्ट कैलिफ के जिनके जमाने में उन्होंने, यानी दीन इस्लाम की एक्सपेंशन हुई थी, बॉर्डर्स जो है वो एक्सपैंड हुए थे, हिजाज से बाहर निकले थे, और फिर वहां पे जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई, जैसे जैसे जो है वो एरियाज रीजन जो है वो मुसलमानों के कब्जे में आते गए, वैसे वैसे उसके हिसाब से वो सूबे बनाते गए और उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो प्लेस करते गए। अमीर 32, अभी हमने जो बच्चों की क्लास चल रही है जिसमें हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या पढ़ा कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 32 गवर्नर, कम से कम 32, 32 गवर्नर्स, राइट। तो 32 गवर्नर्स का मतलब क्या है कि अगर एट अ टाइम 32 गवर्नर्स थे, तो 32 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स तो थे ना मुसलमानों के तहत, ठीक है ना। और ये बढ़ते चले जा रहे थे, उसके मुताबिक जो है वो ऑन नीड बेसिस, ये कोई कार्व्ड इन स्टोन की थोड़ी होता है, ठीक है। तो ये तो हमारे तो दूसरे ही मसले, हम तो समझ के नहीं दे रहे हैं बातों को। तो बहरहाल आगे चले, कौमियत और इज्तमाहियत के लिए कुरानी तालीम। कुरान करीम ने इंसान को फिर भूला हुआ सबक याद दिलाया, ठीक है। सूरह निसा की शुरू आयात में ये वाजह कर दिया कि तुम सब इंसान एक माँ बाप की औलाद हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तशरीह करते हुए हज्जतुल विदा के खुतबे में ऐलान कर दिया कि किसी अरबी को अजमी पर या गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है, ठीक है। कि ये अरबी होने की वजह से जो है वो, भाई इन अकरमकुम इंद अल्लाही अतकाकुम, है ना, ये तो सबको पता है, बचपन से सुनते आ रही वाली आयत, कि अल्लाह ताला के नजदीक अकरमकुम इंद अल्लाह, ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक कौन है, जो तुम में से ज्यादा तकवा वाला है, ठीक है। तो तकवा वाला का मतलब क्या कि किस बुनियाद की फजीलत है, रूहानी फजीलत, ठीक है, रूहानी फजीलत जो कि तकवा से मिलती है। ये जो है वो चिल्ले काटने से नहीं मिलती, ये मुराकबे करने से नहीं मिलती, ये कोई खास किस्म की जो है वो इबादतें करने से नहीं मिलती, ये गुनाहों से बचने से मिलती है। यानी अल्लाह के जो अहकामात हैं, उन अहकामात को पूरा करने से मिलती है, इसी को तकवा कहते हैं। अतकाकुम, तुम में से ज्यादा तकवा वाला वो है, उसकी फजीलत है, ठीक है। तो बाकी की चीजों की फजीलत वो इस बुनियाद पर नहीं है, ठीक है। हाँ, किसी को जो है वो अगर हुक्मरान बना दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फजीलत वाला है, इस वजह से उसको हुक्मरान बनाया, ठीक है। उसकी और रीजंस हैं कि उसके भाई स्किल्स होती हैं हर इंसान के अंदर, ठीक है। अगर उसको हुक्मरान बनाया है, तो इसकी वजह ये भी होती है, ही इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तकवा में वो जरूरी नहीं है कि वो सबसे ज्यादा फाइज हो, सबसे ज्यादा बुलंद हो, दूसरे लोग उससे ज्यादा बुलंद हो सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली अंदर स्किल्स हैं। तकवा वाले के अंदर जो है जरूरी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी ज्यादा, ठीक है। उसी तरीके से किसी को जो है वो फौज का सिपहसालार बनाए, तो फौज के सिपहसालार बनाने का मतलब ये को थोड़ी है कि वो तकवा के अंदर सबसे ज्यादा बुलंद होगा, बल्कि तकवा वाले उससे ज्यादा हो सकते हैं जो कि उसके मातहत रह करके जंग में लड़ेंगे। लेकिन उसके अंदर कोई और सलाहियत है किसी और रीजन की वजह से, कोई पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है, उसकी वजह से जो है उसको जंग का सिपहसालार बनाया। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला, वो सिपहसालार बनाए गए, अमीर लश्कर बनाए गए, और उनके तहत कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला, और कितने अकाबिर सहाबा, ठीक है। लेकिन वो सिपहसालार नहीं बनाए गए। सिपहसालार किसको बनाए? जो कि उस वक्त उम्र के हिसाब से लिटरली ही वॉज अ टीनेजर, या बस जस्ट लाइक ग्रू अप, ग्रू मोर देन अ टीनेजर, ठीक है। तो फजीलत तो अल्लाह ताला के नजदीक जो है, और हमारे यहाँ फजीलत का मेयार वही है, तकवा ही है, और कोई फजीलत का मेयार नहीं है कि अरबी ज्यादा फजीलत वाला है, या अजमी ज्यादा फजीलत वाला, या गोरा ज्यादा फजीलत वाला, या काला ज्यादा ज्यादा फजीलत वाला। तो फजीलत का मदार तो सिर्फ तकवा और अताअत खुदा ताला पर है, ठीक है। तो अकरम मतलब इज्जत वाला, ठीक है। तो अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला जो है, तो क्या वो अल्लाह के बंदों के नजदीक इज्जत वाला नहीं होना चाहिए? ठीक है, ये किस किस्म के अल्लाह के बंदे हैं कि जिनके नजदीक इज्जत वाला कौन है कि जो के सिपा सालार है फौज का, या इज्जत वाला कौन है जो के किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का जो है वो इंचार्ज है, वो इज्जत वाला है, राइट। या इज्जत वाला वो है कि जिसके पास शायद कुछ डिग्रियां ज्यादा हैं, या फैक्ट्स एंड फिगर्स का अंबार उसके पास लगाया हुआ है, मालूमात जिसको कहते हैं, वो ज्यादा इज्जत वाला है, राइट। तो ये भाई किस किस्म के अल्लाह के बंदे हैं, ये किस किस्म के ईमान वाले हैं, अल्लाह से शदीद मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लज़ीन आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह ताला तो ये फरमाते हैं ईमान वाले तो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। और ये ईमान वाले किस किस्म के ईमान वाले हैं कि अल्लाह के नजदीक जो इज्जत वाला है वो इनके नजदीक इज्जत वाला नहीं है, इनके नजदीक इज्जत वाला जो है वो आर्मी चीफ है, इनके नजदीक इज्जत वाला जो है वो चीफ मिनिस्टर है, इनके नजदीक इज्जत वाला जो है वो अपने पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन है, इनके नजदीक इज्जत वाला जो है वो गवर्नर साहब है, इनके नजदीक इज्जत वाला जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब है। वो किस 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 नाम के, किस काम के मुसलमान हो भाई? अल्लाह ताला से किसी किस्म का तुम्हें कोई ताल्लुक है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है? अल्लाह से कोई रिश्ता है या बस मम्मा डैडी ने जो है वो नाम रख दिया कोई मुसलमान वाला? पता कुछ भी नहीं है अल्लाह कौन होता है और क्या होता है और क्या चाहता है अल्लाह ताला, ठीक है। तो जब ऐसा मामला होगा तो फिर यही होगा जैसे कि हो रहा है, ठीक है। तो भाई हमारे नजदीक भी इज्जत का मेयार तकवा ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारे परवरदिगार के नजदीक इज्जत का मेयार सिर्फ तकवा है और नहीं है कोई इज्जत का मेयार, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर स्टॉप कॉलिंग योरसेल्फ अ गुड मुस्लिम, ठीक है ना। अंग्रेजी फरफर बोलता है तो जी ये इज्जत का मेयार है, अमरीकी एक्सेंट में बोलता है तो जी इज्जत का मेयार है, बरतानवी एक्सेंट में अंग्रेजी बोलता है, या साइंस के अंदर जो है वो बड़ा उसने तरक्की करी है तो ये इज्जत का मेयार है हमारे नजदीक, ग्रेड्स इसके ज्यादा अच्छे आते हैं तो ये इज्जत का मेयार है हमारे नजदीक। तो अगर से तो तुम्हारा कोई ताल्लुक ना हुआ ना फिर, ठीक है। इस कुरानी तालीम ने इन्नमल मुमिनून इख्वा के सिवाय इसके नहीं कि ईमान वाले तो भाई भाई हैं, और ईमान वाले कौन होते हैं? अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो कि अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करते हैं। तो जब वो अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करते हैं तो फिर वो आपस में भी भाईचारा और अखुवत के साथ, राइट, एक दूसरे के साथ अल्लाह की निस्बत से मोहब्बत करते हैं, ठीक है। तो कुरानी तालीम ने इन्नमल मुमिनून इख्वा का ऐलान करके हबशा के काले भुजंग को, यानी शदीद किस्म का जो काला इंसान होता है कि जिसको कहते हैं ना वो राख, ऐश, ऐश का जो रंग होता है ना वो अजीब सा होता है, वो काला भी होता है लेकिन उसके अंदर एक ग्रेश ग्रे काले होते हैं कि उनके अंदर ऐश का रंग का टेंज होता है, ऐसे हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला थे, ठीक ठीक है, को सुर्ख तुर्की और रोमी का, अजम की निचली जात के इंसानों को अरब के कुरैशी और हाशमी का भाई बना दिया। तो हमें दूसरे के बारे में कैसे पता चलेगा कि दिखावा कर रहा है या वही वो वाकई ही मुत्तकी है? दिखावा कर रहा है कि वाकई मुत्तकी है, ये तो हमारा हमारा काम ही नहीं है ना करने का, ठीक है, क्योंकि हम दिनों का हाल नहीं जानते और ना हमें किसी तरीके से पता चल सकता है। ठीक है, तो ये भी उमर फारूक सुल्तान का कौल, इसमें भी हमारे लिए बिशले राह है कि फरमाया कि जब नबी अलैहिस्सलाम थे ना, तो उनको तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर के बताते रहते थे, ठीक है, लेकिन अब जो है ना, वो हम मामला किस बुनियाद पे करेंगे? जाहिर की बुनियाद पे करेंगे, ठीक है ना, जैसा जाहिर में नजर आएगा वैसा ही हम उस बंदे के साथ मामला करेंगे। तो जाहिर के अंदर जो मुत्तकी है हम उसको मुत्तकी समझेंगे, दिल में वो वाकई है कि नहीं है, दिस इज नॉट आवर प्रॉब्लम, दिस इज नॉट आवर प्रॉब्लम, एंड वी विल नॉट बी आस्क्ड अबाउट इट, वी आर नॉट आंसरेबल फॉर इट, कि वो वाकई मुत्तकी नहीं था, तुमने उसकी कैसे इज्जत कर दी, जाओ जाओ पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, ये हम इसके मुकल्लफ नहीं है, हम इसके जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। लेकिन मसला क्या है, अगर आपसे पूछें मसला क्या है, हम हकीकत के मुकल्लफ नहीं है, उसके दिल के मुकल्लफ नहीं है, हम जाहिर के मुकल्लफ हैं, राइट, हमारा काम यह है कि जाहिरी तौर पे जो नजर मुत्तकी मानने के लिए हमें क्या चीजें उसके अंदर चेक करनी चाहिए, राइट, क्या लिखा है उन्होंने, हमारी नजर जाहिर के बजाय बातिन पर लगी होती है नहीं, हमारी नजर, खैर वो भी एक अलग मसला है, लेकिन अभी यहाँ पे उसका उसकी रेलेवेंस नहीं है, जो आप कह रहे हैं ना कि हमारी नजर जाहिर की बजाय बातिन पे लगी होती है, यानी जो हम नहीं देख सकते हम उसके पीछे यानी जुस्तजू में लगे रहते हैं, ये भी एक मसला है, लेकिन अभी इनके सवाल के जवाब जो है ना वो इससे रिलेटेड नहीं है। इनके सवाल के जवाब ये है कि मसला ये है कि वी डोंट इवन नो व्हाट तकवा इज, तकवा कैसे पता चलेगा, चले आप ये तो बता दें, हाउ डू वी नो कि समबडी इज मुत्तकी, दिल की बात नहीं कर रहे जाहिर की बात कर रहे, हाउ डू वी नो दैट समबडी इज मुत्तकी, जी ये तो आप लोग ही बताएंगे, हाउ डू वी नो कि समवन इज मुत्तकी और कैसे जज करेंगे, कैसे मालूम करेंगे, ताकि हम उसकी इज्जत कर सके ना, ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी इज्जत करें, क्योंकि अल्लाह के नजदीक मुत्तकी इज्जत करने इज्जत के लायक है, और हम अल्लाह के बंदे हैं तो हम उसकी जो है वो इज्जत करेंगे, ठीक है ना, तो कैसे पता चलेगा कि बंदा मुत्तकी है कि नहीं है, इत्तेबाई यानी लंबी सी दाढ़ी होनी चाहिए उसकी, है ना, और उसकी शलवार जो है ना वो टखने से ऊपर होनी चाहिए, है ना, सुन्नत के इत्तबा और गुनाहों से हिफाजत, इस समवन फॉलो शरीयत, ठीक है। शेयर कैन यू प्लीज क्लोज योर माइक, तो फिर आपको आवाज कैसे आएगी, आप किसको शेयर बोल रहे हैं, मुझे शेयर तो नहीं हूँ, शेख क्या करें, तो अगर मैं क्लोज कर दूं अपने माइक को तो फिर आप सुनेंगे कैसे यार मेरी पक पक गुनाहों से बचने की कोशिश करता हो बल्कि काफी हद तक कामयाब भी होता हो उसके अंदर, गुनाहों से बचना ये है तकवा का की डेफिनेशन, गुनाहों से, गुनाहे कबायर कबीरा बल्कि कबीरा गुनाहों से बचने वाला, ठीक है, ये है तकवा की डेफिनेशन। अब ये कौन कौन मालूम कर सकता है कि भाई ये गुनाहों से बचता है कि नहीं बचता, कौन मालूम कर सकता है, जिसको के फॉलोइंग सुन्ना इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वी डोंट इवन नो व्हाट सुन्ना इज एक्चुअली, ठीक है ना, तो आप ये सुनना उनना जो है ना ये पुरानी बातें हो गई, अब आजकल जो है ना वो सुनना से पहले आपको शरीयत को देखने की जरूरत है, जिस चीज को हम सुनना कह रहे हैं ना वो पहले उससे पहले शरीयत आती है, ठीक है, नेकी खुश कर दे और गुनाह गमगीन कर दे, भाई उसकी बात हो रही है, आपकी बात की थोड़ी हो रही है, वो खुश होता है, गमगीन हुआ बैठा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो, वी नीड टू नो व्हाट गुनाह आर, एब्सोल्युटली वी नीड टू नो व्हाट गुनाह इज, व्हाट गुनाह आर। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि गुनाह क्या होता है, आप कैसे किसी के बारे में फैसला कर सकते हैं कि वो मुत्तकी है कि नहीं मुत्तकी है? कैसे पता करोगे कि वो मुत्तकी है कि नहीं मुत्तकी है? तुम्हें खुद कुछ नहीं पता कि गुनाह क्या चीज होती है, राइट? शरीयत की पाबंदी भी जो है ना, वो भी इसका मतलब यही है कि क्या गुनाह है, क्या अल्लाह का हुक्म है, उस हुक्म को तोड़ना गुनाह होता है। हमें तो अल्लाह के अहकामात का नहीं पता, हमें तो सिर्फ ये पता ना, ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ता है और रोजा रखता है और ज़कात देता है और जो है हज भी कर लेता है, बस। वी डोंट इवन नो व्हाट गुनाह आर बिकॉज वी हैव सच सिवियर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट इल्म, वी हैव सिवियर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। गुनाह की समझ नहीं है हमें, तो जब गुनाह की समझ ही कोई नहीं है तो आप किसी को जो है वो समझ ही नहीं सकते कि बंदा मुत्तकी है कि मुत्तकी नहीं है। हम तो देखते हैं कितने हज करता है, कितने उमरे करता है, राइट, और कितने जो है वो माल लुटाता है अपने चैरिटी के अंदर, राइट, और जो है वो कितनी लंबी इसकी दाढ़ी है और कितना जो है वो जबरदस्त किस्म का ग्लैमर, ग्लैमराइज किस्म की तकरीरें करता है जबरदस्त किस्म की, है ना? ये हमारा क्राइटेरिया है किसी को मुत्तकी समझने का, राइट? मुत्तकी समझने का क्राइटेरिया क्या है? जबरदस्त किस्म की तकरीरें करते होंगे, रटी हुई होंगी उनको हदीसें, रटी हुई होंगी उनको आयात, मतलब जबरदस्त मुत्तकी हैं ये तो जबरदस्त फर फर करके हदीसें सुनाते हैं, फर फर करके जो है वो उनको मसाइल भी रटे हुए हैं, राइट, मसाइल भी रटे हुए हैं। भाई ये तो क्राइटेरिया नहीं है तकवे का, ये तो क्राइटेरिया नहीं है तकवा का। बात समझ में आई? ये क्राइटेरिया नहीं है तकवा का। तकवा का क्राइटेरिया है शरीयत की इत्तबा, यानी गुनाहों से बचना, ठीक है? ये फियर ऑफ अल्लाह, अल्लाह का खौफ जो है ना, ये तो दिल की बात आपने कर दी है ना, दिल में तो हम झांक के देख ही नहीं सकते कि फियर ऑफ अल्लाह है कि नहीं उसके अंदर, ये तो हम देख ही नहीं सकते, ठीक है? हम अपना काम करें कि हम अल्लाह की पसंद को अपनी पसंद बनाएं, हम अल्लाह का जो मेयार है ना इज्जत का, उसको अपना मेयार बनाएं जो कि है तकवा। और जब तकवा अपना मेयार बनाएंगे तो फिर भी हमें पहले सीखना पड़ेगा कि तकवा का मतलब क्या होता है, ठीक है जी? ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लें। अच्छा, तो भजन, काले भजन को सुर्ख तुर्की और रूमी का, और अजम को निचली जात के इंसानों को अरबी के कुरैशी और हाशमी का भाई बना दिया। कौमियत और बरादरी इस बुनियाद पर पाएगी कि अल्लाह ताला और रसूल को मानने वाले एक कौम है और ना मानने वाले दूसरी कौम। तो इल्म के बगैर अंडरस्टैंडिंग की कोई, क्या लिखा आपने, डिलीट कर दिया, कुछ और आपने लिखा था। खैर, तो कौमियत और बरादरी इस बुनियाद पर कायम की अल्लाह ताला, ठीक है? तो कुरान मजीद तो शुरू ही ऐसे किया ना, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना, कौन अल्लज़ीना, दोज़ हू, ठीक है ना, वो लोग जो, अब वो ईमान की डेफिनेशन आ रही है, ठीक है ना, युमिनुना बिल गैबी व युकीमुना सलात वहुम बिल आखिरति हुम यूकिनुन, राइट? और फिर उसके बाद काफिर की डेफिनेशन, जो कि इनकार कर देते हैं, नबियों का इनकार कर देते हैं। फिर उसके बाद मुनाफिकीन की डेफिनेशन, ये कौमियत है कुरान की, तो ये कौमियत है, आपकी पता नहीं कौन सी कौमियत है, और ना मानने वाले दूसरी कौम है। यही वो बुनियाद थी जिसने अबू जहल और अबू लहब के खानदानी रिश्तों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तोड़ दिया। ये दोनों खानदान वाले थे, कुरैश खानदान था, राइट, और अबू लहब जो था वो सगा चचा था, ठीक है ना, ख्वाजा अब्दुल्ला, बल्कि रजी अल्लाह ताला हदीस के मुताबिक तो वो मुसलमान हो गए थे, ठीक है? तो अब्दुल्ला के सगे भाइयों में से थे ना, था ना ये अबू लहब, बदतरीन दुश्मन था नबी अलैहिस्सलाम का। तो इस रिश्ते को तोड़ दिया, ठीक है, और बिलाल हबशी, हबशा से यहाँ पे गुलाम बना करके लाए गए थे, और यहाँ पे जो है वो किस तरह से जिंदगी गुजारते थे, और सुहेब रूमी का रिश्ता जोड़ दिया। सुहेब रूमी ये असल में रोमन नहीं थे, ये इराक के रहने वाले थे, कहीं मूसल वगैरह के रहने वाले थे और वहां के जो है वो सरदार के बेटे थे। जब रोमन्स ने अटैक किया था इनके कस्बे के ऊपर, तो इनको गुलाम बना करके वो रोमी जो है वो ले गए थे और वहां जाके शाम में बेच दिया था, यानी रोमियों का जो इलाका था वहां पे जाके बेच दिया था। अब वहां से जो है वो किसी कुरैशी ने जाके उनको खरीदा, फिर जो है वो उनको यहाँ मक्का मुकरमा लेकर के आया। तो ये रोमी असल में नहीं थे, ये इराकी थे, लेकिन कुरैशी तो बिल्कुल भी नहीं थे ना, अरब तो नहीं थे ये, ठीक है ना। उस जमाने का इराक जो है वो अरब कोई थोड़ी था, ठीक है। तो बिलाल हबशी और सुहेब रोमी का रिश्ता जोड़ दिया और अबू लहब और अबू जहल का रिश्ता तोड़ दिया। आगे फारसी का शेर है, फारसी मुझे नहीं आती लेकिन अल्फाज जो है वो इतने मुश्किल नहीं है। कि हसन ज बसरा, ठीक है, हसन बसरी बसरा के थे, बिलाल ज हबश वो हबशा के थे, सुहेब अज रोम सुहेब रोमी रोम के थे, ठीक है। जखा के मक्का अबू जहल ईचे बुल अजबी सत, जो मक्का की खाक का था, मक्का मुकरमा का, वो तो अबू जहल था। वो किस बुनियाद के ऊपर अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, शायद इसका ये मतलब है, ठीक है ना, ये पता नहीं किस जो है वो अपने घमंड में मुब्तला है, अबू जहल मक्का का होने की वजह से, ठीक है ना। तो भाई इज्जत तो बिलाल हबशी और हसन बसरी और सुहेब रोमी ले गए ना, इसके तो हाथ कुछ भी ना आया। हत्ता के कुरान करीम ने ऐलान कर दिया, खलाकुम, कि उसने तख्लीक किया तुमको, फमिनकुम काफिरुन वमिनकुम मोमिन, हमारे दरमियान फिर काफिर हैं और मोमिन हैं, यानी अल्लाह ताला ने तुम सबको पैदा किया, फिर तुम दो हिस्सों में बट गए, यानी जिन्होंने इनकार किया अल्लाह के हुक्मों का वो काफिर हो गए और जिन्होंने इकरार किया वो मोमिन हो गए। बदर व उहद और अहजाब व हुनैन के मारकों में इसी कुरानी तकसीम का अमली मुजाहरा हुआ था कि नस्बी भाई यानी सगा भाई हो या कजन हो या सेकंड कजन हो, जब खुदा ताला और उसके रसूल की अताअत से बाहर हुआ तो मुसलमान भाई का रिश्ता अखुवत व तआवुन इससे कट गया। अखुवत भी खत्म हो गई यानी भाईचारगी खत्म हो गई, तआवुन ये भी खत्म हो गया और वो उसकी तलवार की जद में आ गया, राइट, अपने रिश्तेदारों को जो है वो कत्ल कर दिया बदर के अंदर, ठीक है। और होती ऐसे ऐसे वाकयात हैं जिसको कि हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, करना चाहिए ना। नस्बी भाई तलवार लेकर मुकाबले पर आया तो इस्लामी भाई इमदाद के लिए पहुंचा, गजवाए बदर व उहद और खंदक के वाकयात इस पर शाहिद हैं। हजार खुवैश के बेगाना, बेगाना अज खुदा बाशद, फिदाई यक तन बेगाना के आशना बाशद, एक तन एक जान हो गए, फिदा हो गए एक दूसरे के ऊपर और जानने वाले बन गए। आयत मस्कूरा में कुरान करीम ने तआवुन व तनासुर का यही माकूल और सही उसूल बताया है, तआवनु अलल बिर्रि व तक्वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उदवान, यानी नेकी और खुदा तरसी पर तआवुन करो एक दूसरे के साथ, बदी और जुल्म पर तआवुन ना करो, ठीक है। अब जो है वो यहाँ पर एक और अहम नुक्ता जो कि बहुत हमसे रेलिवेंट है, गौर कीजिए कि इसमें कुरान करीम ने ये उनवान भी इख्तियार नहीं फरमाया कि मुसलमान भाइयों के साथ तआवुन करो, ये भी नहीं कहा कुरान मजीद ने, ठीक है, और गैरों के साथ तआवुन ना करो यानी गैर मुस्लिमों के साथ तआवुन ना करो, ये भी नहीं फरमाया अल्लाह ताला ने, बल्कि मुसलमानों के साथ तआवुन करने की जो असल बुनियाद है यानी नेकी और खुदा तरसी, उसी को तआवुन करने की बुनियाद करार दी, बुनियाद की बेसिस पे तआवुन क्या का हुक्म दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई मुसलमान भी अगर खिलाफ इस्लाम काम कर रहा है, तआवुन ना करो उसके साथ, ठीक है। जिसका साफ मतलब यह है कि मुसलमान भाई भी अगर हक के खिलाफ या जुल्म व जोर की तरफ चल रहा हो तो ना हक और जुल्म पर उसकी भी मदद ना करो, वला तआवनु अलल इस्म वल उदवान, मुसलमान की भी मदद ना करो, बल्कि इसकी कोशिश करो कि ना हक और जुल्म से उसका हाथ रोको, क्योंकि दर हकीकत यही उसकी सही इमदाद है ताकि जुल्म और जोर से उसकी दुनिया और आखिरत तबाह ना हो जाए, क्योंकि वो जुल्म करेगा अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकेगा, राइट। यानी ये ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा लाजिम और मलजूम का रिश्ता है कि जुल्म मीन्स पनिशमेंट, जुल्म मींस बर्बादी, तो उसको जुल्म से रोकने का मतलब क्या, उसको उसकी बर्बादी से रोकने की कोशिश करो। हम जो है वो बर्बाद हो रहे होते हैं, बेड़ा गरक हो रहा होता है, एक दूसरे को वाकयात सुनाते हैं। अभी चंद साथियों के साथ बैठे हुए थे, आप में से भी चलते हैं उसके अंदर, राइट, कि कराची के अंदर जो है वो ऐसे लूट लिया, फिर वैसे लूट लिया, फिर ऐसे हो गया, फिर वैसे हो गया, फिर यानी लुटने लुटाने के अनगिनत वाकयात सबकी जुबान पर हैं कराची में। फिर कोई जो है वो आप में से वो लाहौर के बारे में भी सुनाना शुरू हो गए कि ऐसे जो है उन्होंने छीन लिया, और ऐसे जो है वो मार दिया, और ऐसे जो है ये कर लेते हैं, और कुर्बानी का जानवर जो है ना वो अभी आ रही है ना बकरीद, ठीक है ना, तो बकर वो जो बकरा पीढ़ी है उसको कराची के बहुत बाहर जो है वो मूव कर दिया गया है, ठीक है। तो अब वो बकरा पीढ़ी जो लोग जाते हैं ना गाय खरीदने के लिए, तो भाई गाय तो 1.5 लाख से कम की तो गाय नहीं मिलती, तो रास्ते में फिर मांगने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं, और फिर जो है वो मांग लेते हैं कि भाई जरा दे दीजिए वरना हमारे पास ये बंदूखा है, ठीक है, तो उसका मजा थोड़ा सा आपको चखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आम हो गया, और हम ऐसे चहक चहक करके एक दूसरे को वाकयात सुनाते हैं, लेकिन हमारा ना तो हम बात करते हैं इस मौजू के ऊपर, ना जो है वो हम अक्सर हम में से सोचते भी नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया कि किसी की जान माल इज्जत आबरू कुछ भी जो है वो महफूज नहीं है, किस वजह से ऐसा हुआ है। वही हुक्मरानों की वजह से ना, वही जो है वो सियासतदानों की वजह से ना, या किसी को फौज से वो है तो फौजी फौजियों की वजह से ही ऐसा हो गया। वो भाई तुम्हारे जो गुनाह है जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हारे साथ ये किया है, तो नहीं ये तो वी डोंट इवन वांट टू गो देयर ना, हम तो इस तरफ जाने ही नहीं चाहते, इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो सारा का सारा हुक्मरानों का कसूर है, गुनाहों से तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं। तो किस किस्म के मुसलमान है, कौन से वाले कुरान के ऊपर जो ईमान रखते हैं, पता नहीं अपना कोई कुरान बनाया हुआ है। वो जो इंटरनेट के ऊपर एक से एक तमाशे छोड़ते रहते लोग ना, द ग्रीन बुक, ये ग्रीन बुक आ गई है वो कुरान को रिप्लेस, भाई आपने पहले से खुद ही कुरान को रिप्लेस किया हुआ है, कोई ग्रीन बुक आकर कुरान रिप्लेस नहीं कर सकती, आपने खुद रिप्लेस किया हुआ है कुरान को अपने बनाए हुए कुरान से, ठीक है। तो भाई गुना जुल्म इज इक्वल टू सजा, और ये सारी की सारी जो सजा मिल रही है चाहे आप माने या ना माने, ये सिर्फ गुनाहों की वजह से, और कोई वजह नहीं है इसकी। तो जिसका साफ मतलब यह है कि मुसलमान भाई भी अगर हक के खिलाफ या जुल्म जोर की तरफ चल पड़े तो ना हक और जुल्म में उसकी भी मदद ना करो, क्योंकि ये उसकी बर्बादी है। आगे पढ़ने से पहले इन्होंने कोई लंबा सा इतना मैसेज लिख दिया, तो पढ़ लेते हैं। टुडे वी वर डिस्कसिंग एट होम अबाउट व्हाई कुफार ऑफ इंडिया डोंट एक्सेप्ट इस्लाम। आई एक्सप्लेन दैट बिकॉज ऑफ लव ऑफ दुनिया एंड अनानियत, ठीक है, कुफार क्यों इस्लाम कबूल नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर दुनिया की मोहब्बत और अनानियत है, यानी तकब्बुर है। सो सम मेंबर्स मेंशन दैट सम हिंदूज आर सुपर डेडिकेटेड टू देयर रिलीजन एंड इवन लेफ्ट दुनिया लाइक बींग अ सन्यासी और डेडिकेटेड देयर एंटायर वेल्थ फॉर देयर कॉज एंड इवन सम प्रिजर्व मॉरल वैल्यूज लाइक दे डोंट कमिट जिना इवन दे इवन फास्ट, ठीक है ना, यानी जो सन्यासी किस्म के हिंदू होते हैं, जोगी या सन्यासी शायद, तो वो जो है वो अपनी दौलत उन्होंने सारी की सारी जो है वो चैरिटी कॉजेस के अंदर दे दी है, और वो इस तरह के गुनाह नहीं करते, बल्कि रोजे भी रखते हैं उनके हिसाब से जो उनके रोजे की डेफिनेशन होगी। इन लाइट ऑफ दिस व्हाट्स ए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अच्छा, इनसे जो है ना फिर जब इन्होंने घर में कहा कि भाई हिंदू इस वजह से मुसलमान नहीं होते क्योंकि दुनिया की मोहब्बत है उनके अंदर और जो है वो अनानियत होती है, तो किसी घर वाले ने, माशाल्लाह घर के अंदर इस किस्म की डिस्कशन होना बहुत अच्छी बात है और सबको ये करने की जरूरत है, ठीक है ना, हम सबको ये करने की जरूरत है, अपने घर के अंदर इन बातों को डिस्कस करें, ठीक है ना, खुद से नहीं, कोई नया टॉपिक जनरेट नहीं कर सकते, तो जो दर्स कुरान है उसके अंदर जो बातें हुई हैं उनको घर के अंदर डिस्कस करें। तो आगे से जो सवाल हुआ कि भाई ये तो ऐसा लगता है कि दुनिया की मोहब्बत इनके अंदर है ही नहीं, तो फिर आप कह रहे हैं कि दुनिया की मोहब्बत की वजह से जो है वो इस्लाम को कबूल नहीं करते, ठीक है, तो इन लाइट ऑफ दिस व्हाट्स ए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ये जो जवाब वैसे तो आपसे ही मांगना चाहिए, ठीक है। वो एक टीचर होते थे ना, तो उनके स्टूडेंट उनसे जब सवाल करते थे ना, तो वो जवाब दे देते थे, वेरी गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वो जवाब नहीं दे देते थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने भी एक तरीका इजाद कर लिया है, जवाब देने के बजाय कहते हैं कि आप ही जवाब दें इसका, ठीक है। बहरहाल मैं तो किसी वजह से कह रहा हूँ कि आप ही जवाब दें, क्योंकि इसका जवाब हम बहुत दफा बात कर चुके हैं, ठीक है, तो बात भी कर चुके हैं, और आपको वैसे भी पता होना चाहिए इसका जवाब क्या है। दुनिया की मोहब्बत, जवाब तो आपने दे दिया था सही, लेकिन इस जवाब को डिफेंड भी तो करना आना चाहिए ना, तो डिफेंड जो है वो शायद आप नहीं कर पा रहे हैं। देयर, अच्छा उन्होंने लिखा है, देयर रिलीजन रिफर्स टू ए बेटर लाइफ आफ्टर दिस वन इन फॉर्म ऑफ ए न्यू जन्म, विच इम्प्लाइज दैट देयर रिलीजन इज द लव ऑफ दुनिया। अच्छा, ये आपने अच्छी इम्प्लीकेशन वैसे बनाई है कि लव ऑफ दुनिया उनके अंदर है, क्योंकि उनको जो भी नेकियां करते हैं तो वो दुनिया में ही उसका अंजाम मिलता है। तो ये तो खैर ये भी सही एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन ये बात आपने बड़ी अच्छी करी कि उनका जो दीन है ना, वो भी दुनिया ही के अंदर घूम रहा है, क्योंकि मरने के बाद उन्होंने इसी दुनिया के अंदर वापस जाना है किसी बेहतर फॉर्म के अंदर, अगर नेकी करेंगे तो, ठीक है। तो ये दुनिया की मोहब्बत ही है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने लिखा, शायद ये है कि शैतान मेड दिस लुक गुड इन देयर आइज, शैतान मेड दिस लुक गुड इन देयर आइज। वो दरअसल अपनी मशहूरी के लिए ऐसा करते हैं, नहीं उसके ऊपर आपके सामने आ जाएंगी कुछ ऐसी भी एग्जांपल्स की जो कि मशहूरी के लिए नहीं करे, क्योंकि कोई उनको जानते ही नहीं है, एंड दे आर नॉट एडवर्टाइजिंग देमसेल्व्स, ठीक है। तो अब फिर उसके बाद आप क्या जवाब देंगे कि वो तो मशहूरी के लिए फिर नहीं कर रहे अपनी। अच्छा, इन्होंने जवाब दिया कि दुनिया इजन जस्ट मटीरियल थिंग्स, एनी थिंग दैट कम्स बिटवीन अल्लाह एंड अस इज दुनिया, ठीक है। बात बिल्कुल सही है, और यही इसका जवाब है कि दुनिया इज इन जस्ट मटीरियल थिंग्स, एनी थिंग दैट कम्स बिटवीन अल्लाह एंड अस इज दुनिया। सो वॉट इज दैट थिंग दैट कम्स बिटवीन अल्लाह एंड अस, वॉट इज दैट थिंग दैट कम्स बिटवीन अल्लाह एंड अस विच इज नॉट माल, पैसा, जमाल, जी नफ्स, नफ्स विच इज इन विद इन अस, विच इज पार्ट ऑफ अस, विच इज पार्ट ऑफ अस, हमारा अपना नफ्स, ठीक है। तो अगर आप माल भी जो है ना वो चैरिटी में दे दें, और औलाद से भी जो है वो आप किनारा कश हो जाएं, ठीक है, और आप जो है वो अपनी फास्टिंग भी करना शुरू कर दें, यानी खाना पीना भी जो है वो आप अपना कंट्रोल कर दें इस हद तक कि फास्टिंग शुरू कर दें, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने नफ्स की मान करके ये सारे काम कर रहे हैं, बिकॉज आपका नफ्स पसंद करता है इन कामों को, तो इसका मतलब भी क्या है कि ये सब का सब जो है वो हुब्बुद दुनिया ही है, क्योंकि दुनिया में हमारा नफ्स भी शामिल है। सिर्फ माल और औलाद और खाना पीना और जेवरात, ये सब सिर्फ दुनिया नहीं है, दुनिया में हमारा नफ्स भी शामिल है। बल्कि हकीकत तो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो मैनिफेस्टेशन है वो हमारा नफ्स ही है। इसी वजह से वो सन्यासी बाबा जो है ना, वो सब कुछ कुर्बान करने के बावजूद वो नफ्स परस्त कहलाएगा, और वो दुनिया की मोहब्बत में मुबतला, शदीद दर्जे की दुनिया की मोहब्बत में मुबतला ही कहलाएगा, ठीक है। नफ्स को कभी ना बोला करें और शैतान को भी ना बोला करें, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली द नफ्स वॉज द कल्प्रिट, ठीक है। टाइम हो गया वैसे तो, कहाँ पर थे हम? तो भाई दीन इस्लाम जो है ना, ये नफ्स परस्ती का नाम नहीं है, ये रोजे रखना शुरू कर दो बिकॉज नफ्स कुछ होता है, फील गुड अबाउट इट, ये अब सारा का सारा माल जो है वो अपना गरीबों के हवाले कर दो बिकॉज यू फील गुड अबाउट इट, या जो है वो जिहाद में निकल जाओ और अपनी जान को भी कुर्बान कर दो है बिकॉज यू फेल्ट वेरी गुड अबाउट अबाउट योर सेल्फ। मैंने तो जो है ना यार बहादुरी के जौहर दिखाए वहां पे जाकर के, जहन्नुम में जाओगे तुम इस तरीके से। बहादुरी के जौहर दिखाते दिखाते अगर जो है वो मैदान जंग में और मुसलमानों के साइड से लड़ते लड़ते अगर मारे भी गए, जहन्नुम में जाओ, जहन्नुम में जाए। क्यों जहन्नुम में जाएंगे? इसलिए कि रसूल के हुक्म पर नहीं लड़ रहे थे, अपने नफ्स के हुक्म पर लड़ रहे थे। ठीक है, ये तो बिल्कुल बुनियादी अंडरस्टैंडिंग है जिससे कि सारी चीजें शुरू होती हैं। आयत मस्कूरा में कुरान हकीम ने तआवुन और तनासुर का यही मापूल और उसूल बताया है। अच्छा हाँ, तो सही बुखारी व मुस्लिम में आखिरी पैराग्राफ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सही बुखारी व मुस्लिम में हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसुर अखाका वालिमन औ मजलूमन, यानी अपने भाई की मदद करो ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम हो। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जो कुरान तालीम में रंगे जा चुके थे, उन्होंने हैरत से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम भाई की इमदाद तो हम समझ गए मगर जालिम की इमदाद का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको जुल्म से रोको, यही उसकी इमदाद है। ठीक है, तो ये आपने कोई पहली दफा ये हदीस नहीं सुनी होगी, आई एम श्योर कि आप जो पता नहीं दसियों मरतब इस हदीस को सुन चुके होंगे और बचपन से सुनते चले आ रहे होंगे, तो नई बात नहीं आपके सामने होगी, लेकिन आज आपने इसकी नई बात क्या सुनी है? काफी लोगों के लिए शायद वो नई बात हो, बाकी लोगों के लिए नई बात नहीं होनी चाहिए, पर वो वाली बात भी कई दफा सुन चुके हैं। ठीक है, नई बात इसके अंदर जो कि इस वक्त हमसे बहुत शदीद किस्म की, यानी जो हम पर अप्लाई होती है बात, वो क्या है कि जुल्म इज इक्वल टू गुनाह। जुल्म का मतलब है गुनाह, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी। और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी का मतलब क्या है? बर्बादी, तबाही व बर्बादी। तो अपने मुसलमान भाई को तबाही और बर्बादी से रोक, जो कि वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करके कमा रहा है, उसको बचाओ, उसकी मदद करो। ठीक है, तो उसूली तौर पर यही बात है, बाकी है कि आप कैसे मदद करो, कैसे उससे बात करो, कैसे उसको कन्विंस करने की कोशिश करो, ये फिर एक अलग तफसीर है जिसका कि आप इस क्लास के अंदर कम अज कम बिल्कुल टाइम नहीं। ठीक है, लेकिन करना तो है, और अगर नहीं कर सकते, नहीं अभी तक सीखा कैसे करना है उसको अल्लाह के हुक्म से के तोड़ने से कैसे रोकना है, तो भाई सीखना शुरू करें और उस वक्त तक उसके लिए फिक्रमंद रहें, उसके लिए फिक्रमंद रहें। ये मत समझें कि वो गुनाह भी कर रहा है और उसको कुछ भी नहीं होगा, ये मत सोच आने देना अपने अंदर कि वो गुनाह कर रहा है और उसको कुछ नहीं होगा। नहीं, वो बर्बाद हो रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है, तो इस वजह से तुम उसकी फिक्र करो, दुआएं करो उसके लिए, और जहन में सोचते रहो कि ए अल्लाह कोई मुझे रास्ता दे दे, कोई मुझे तरीका सुझा दे कि मैं उसको बचा सकूं उस बर्बादी के रास्ते पे, जिस बर्बादी के रास्ते पे वो चल रहा, उस पे चलने से रोकने का कोई रास्ता है अल्लाह तू अता फरमा। लेकिन हम आजकल क्या कर रहे हैं? ना तो हमें अपने गुनाह से कोई खौफ है कि हम गुनाह करके बर्बाद हो जाएंगे, ना हमें किसी दूसरे का खौफ है कि वो गुनाह करके बर्बाद हो रहा है, बल्कि बर्बादियां शर्बादियां ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, नथिंग, कोई कोई इसका दीन वीन से कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह के हुक्म से ताल्लुक है। दिस इज फितना दज्जाल, ये फितना दज्जाल है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम अलैकुम।